ہنسی ٹھہاکوں کا خزانہ، ہنسی قہقہوں کا خزانہ لے کر آپ کے سامنے آ رہے ہیں آپ کے اپنے چہیتے ہاسیہ فنکار، میمکری کلاکار او پی دیویدی، جن کا ہنر سپر کیسٹ انڈسٹریز کے ذریعے ان کے چاہنے والوں کی خدمت میں پہنچتا ہے۔ اب آپ ہنسیے، صرف ہنسیے اور ہنستے رہیے۔ آپ سے مخاطب ہو رہے ہیں آپ کے اپنے چہیتے کلاکار او پی دیویدی۔
تالیوں کے لیے بہت بہت شکریہ۔ او پی دیویدی آپ کے سامنے حاضر ہے اپنے ہنسی کے خزانے کے ساتھ۔ مجھے امید ہے کہ میں جتنی اشانتی کے ساتھ اپنا کاریکرم پیش کروں گا آپ اتنی ہی شانتی کے ساتھ اس کاریکرم کو سنیں گے۔ کچھ بہت ہی مزیدار لطیفوں سے بات شروع کر رہا ہوں۔ ایک صاحب اندھے تھے، انہیں ایک جگہ برتھ ڈے ڈنر پر بلایا گیا۔ بہت خوش ہوئے کہ بہت دنوں بعد ڈھنگ کا کھانا کھانے کو ملے گا۔ اپنے دوست سے کہنے لگے،
ابے مجھے بفیلو ڈنر پہ بلایا، ابے بفیلو ڈنر پہ۔
ان کا دوست بولا، ابے بفیلو ڈنر نہیں، بوفے ڈنر کہتے ہیں، بوفے ڈنر۔
ابے ہاں بے، وہی بفیلو ڈنر جس میں سب لوگ ایک ساتھ بھینسوں جیسے کھاتے ہیں، کسی کی روٹی کوئی کھا لیتا ہے اور کسی کی سبزی کوئی کھا لیتا ہے۔
اندھے میاں ٹھیک ٹائم پر پارٹی میں پہنچ گئے۔ ڈرائنگ روم میں کیک کٹ رہا تھا، سارے مہمان وہیں اکٹھے تھے۔ اندھے میاں سے زیادہ انتظار کرتے نہیں بنا، انہوں نے سوچا کہ ڈائننگ ہال میں چل کر دیکھا جائے کیا کیا مال بنا ہے۔ یہ سوچ کر اندھے میاں اپنی لاٹھی ٹیکتے ٹیکتے ڈائننگ ہال میں پہنچ گئے اور ٹیبلوں پر ہاتھ سے ٹٹول ٹٹول کر دیکھنے لگے کہ کیا کیا مال بنا ہے۔
یہ کیا؟ ارے گلاب جامن، گلاب جامن تو 3 سال بعد آج کھانے کو مل رہے ہیں، مزہ آ جائے گا۔ یہ کیا؟ ارے گوبھی، گوبھی کی سبزی تو 8 روپے کلو ہے بازار میں، لگتا ہے ان لوگوں نے بہت مہنگی مہنگی سبزی بنائی ہے۔ یہ کیا؟ ارے بھٹا، بھٹا کون بیوقوف کھائے گا۔ یہ کیا؟ ارے کاجو، باپ رے کاجو تو 80 روپے کلو ہے بازار میں، مزہ آ جائے گا۔
اندھے میاں ٹٹول ٹٹول کر دیکھتے جا رہے تھے اور کاجو جیسی چیزیں اپنے جھولے میں بھی بھرتے جا رہے تھے۔ ڈائننگ ہال سے لگا ہوا کچن تھا۔ اندھے میاں کھانا ٹٹولتے ٹٹولتے گلتی سے کچن میں پہنچ گئے اور وہاں ان کا ہاتھ گلتی سے سبزی کی ایک ٹوکری میں چلا گیا۔ ان کے ہاتھ میں گلتی سے ایک کینت یا کبیٹ ان کے ہاتھ میں آ گیا۔
ارے یہ کون سی چیز ہے؟ آپ بہت کڑی ہے، یہ چیز تو میں نے آج تک اپنی زندگی میں نہیں کھائی، اس کو ٹیسٹ کر کے دیکھنا چاہیے۔
یہ سوچ کر اندھے میاں نے اس کبیٹ کو اپنے دونوں ہاتھوں کے بیچ میں رکھ کر زور سے دبایا، لیکن وہ کبیٹ ان کے ہاتھ سے اچھل کر جور سے اچھٹا اور وہاں پر پوڑی سیک رہے حلوائی کے سر پر لگا۔ حلوائی گنجا تھا، درد کے مارے زور سے چیخا، ارے پھوٹ گیا پھوٹ گیا۔ جیسے ہی حلوائی چلایا پھوٹ گیا پھوٹ گیا، اندھے میاں فوراً بولے،
کیوں بے پھوٹ گیا کیا؟ آدھا مجھے دے دینا۔
جب میں ایک بار پروگرام دینے دبئی آیا تو میرے ساتھ میرے ایک دوست بھیا لال جی بھی دبئی آئے ہوئے تھے۔ بھیا لال جی یہاں بھی موجود ہیں، سامنے کی رو میں بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم لوگ راستے سے گزر رہے تھے تو آنے جانے والے رستے چلتے سبھی لوگ بھیا لال جی کو نمستے کرتے جا رہے تھے،
بھیا لال جی نمستے، بھیا لال جی نمستے۔
رکشہ والے بھی رکشہ روک روک کر پوچھ رہے تھے،
بھیا لال جی کہاں چل رہے ہیں؟
ایک ہوٹل میں پہنچے تو وہاں بھی یہی عالم تھا،
اوے بھیا لال جی نو سلاد لگا، اوے بھیا لال جی تسی ویجیٹیرین ہو کہ نان ویجیٹیرین؟
مجھے بڑا آشچرہ ہوا کہ میں تو پہلے بھی کئی دفعہ دبئی آ چکا ہوں، مجھے لوگ پہچان نہیں رہے ہیں، لیکن بھیا لال جی تو پہلی بار دبئی آیا، لوگ اس کا نام تک جانتے ہیں۔ مجھے بھیا لال جی سے بڑی ایرشا ہوئی، بھیا لال جی کو خود بھی بڑا اچرج ہوا کہ وہ پہلی بار دبئی آئے اور لوگ ان کا نام تک جانتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد پھر ایک آدمی بھیا لال جی سے مخاطب ہوا،
بھیا لال جی نمستے۔
اب تو بھیا لال جی سے رہا نہیں گیا، انہوں نے پوچھ ہی لیا،
یار ہم پہلی پہلی بار دبئی آئے، ہم تو کسی کو یہاں جانتے تک نہیں ہیں، لیکن یہاں سب لوگ ہمارا نام جانتے ہیں، ہم کو بھیا لال جی، بھیا لال جی بول رہے ہیں۔
وہ آدمی بولا،
بھیا لال جی ایسا ہے، یہاں دبئی میں جو بھی آدمی بیوقوف یا جھکی قسم کا دکھتا ہے نا، اس کو ہم لوگ بھیا لال جی بولتے
ہیں۔ یہ کائنات بھی اپنے ڈھنگ سے موسم بدلتی ہے، لیکن ان دنوں جو موسم شباب پر ہے وہ ہے کرکٹ کا موسم۔ کرکٹ ہوا یوں کہ ایک جگہ پر کرکٹ کمنٹریٹرز کے انٹرویو ہو رہے تھے، وہاں پر ٹی وی سیٹ پر ہندوستان اور پاکستان کے بیچ کھیلے گئے کرکٹ میچ کی ایک ویڈیو کیسٹ لگا دی گئی تھی، اور جو بھی انٹرویو دینے والا آتا تھا اسے کہا جاتا تھا کہ ٹی وی پر میچ دیکھ کر اس کی کامنٹری کرو، یعنی آنکھوں دیکھا حال سناؤ۔ تو وہاں پر طرح طرح کے لوگ پہنچ گئے، जिन्हें क्रिकेट के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, कौन बैटिंग करता है, कौन बॉलिंग करता है, कौन कौन से खिलाड़ी हैं, लेकिन वो लोग भी वहां कमेंट्री करने पहुंच गए। इन लोगों ने अपने अपने ढंग से खेल का आंखों देखा हाल किस तरह सुनाया, ये मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले मैं आपका तारुफ उन लोगों से करा दूं जो लोग इंटरव्यू देने आए हैं। नंबर एक, मन्नीलाल कबाड़ी फ्रॉम सुखी सिमनिया, जो हाथ ठेले पर लोहा लंगड़ और खता पुराना जंग लगा सामान लेकर गली गली बेचते फिरते हैं। नंबर दो, मच्छिंदर भाई जानी देसी दवाई वाले, जो सड़कों पर मजमा लगाते हैं और रास्ते चलते लोगों को उनकी कमजोरियां बताकर रोक लेते हैं। नंबर तीन, सत्यनारायण की कथा पढ़ने वाले तिलकधारी पंडित श्री श्री 108 पैदाशी तामलोट लोटन प्रसाद सत्यानासी काशी निवासी पंडित राधेश्याम उपाध्याय। नंबर चार, रेलवे अनाउंसर, जो रेलवे स्टेशन पर किसी ट्रेन के अराइवल या डिपार्चर का अनाउंसमेंट करते हैं। नंबर पांच, रेडियो पाकिस्तान पर खबरें पढ़ने वाले न्यूज रीडर। नंबर छह, चना जोर गरम बेचने वाले घूरे लाल जांगड़े। नंबर सात, कान फोड़ तान तोड़ हबीब भाई कव्वाल एंड पार्टी, सड़क छाप कव्वाल, जो इश्क और हुस्न की तकरार वाली कव्वालियों के मुकाबलेबाजी में जाते हैं। नंबर आठ, एक बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार है और उनका तारुफ मैं आपसे बाद में कराऊं तो बेहतर होगा। तो इन सब लोगों ने क्रिकेट की कमेंट्री किस तरह की, ये मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आए मन्नीलाल कबाड़ी फ्रॉम सुखी सिमनिया। कबाड़ी यानी कौन? वो जो हाथ ठेले पर जंग लगा खता पुराना लोहे लंगड़ का सामान लिए घूमते हैं और एक अजीब सुर में चिल्लाते हैं, कैसे?
ये लो टूटा फूटा पुराना सामान खरीदो बेचियो।
ये पहुंच गए क्रिकेट की कमेंट्री करने। पुरानी खाली शीशियां, पुराने डालडे के डिब्बे लिए हुए, मैली कुचैली फटी बनियान, पट्टेदार चड्डी पहने जिसका नाड़ा एक मीटर तक लटक रहा है, कान में बिड़ी खुशी हुई, सर पर फटा हुआ कपड़ा बांधे पहुंच गए अपना ठेला धकाते क्रिकेट की कमेंट्री करने। तो इन्होंने क्रिकेट की कमेंट्री कैसे की, मुलाजा फरमाइए। मन्नीलाल कबाड़ी फ्रॉम सुखी सिमनिया, सबसे पहले इन्होंने टीवी की तरफ देखा और एकदम से चालू हो गए।
ये लोहरा क्रिकेट मैच हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच पुराने सुराने उबड़ खाबड़ मैदान में, ये रवि शास्त्री फटी पुरानी शर्ट पहने पवेलियन में फटी पुरानी जंग लगी कुर्सी पे बैठे हैं, ये गवास्कर पुरानी सुरानी गेंद लेके आ गए, ये इमरान खान ने टूटा फूटा पुराना सुराना बल्ला हो गया।
जैसे ही कमेंट्री खत्म हुई, इंटरव्यू बोर्ड के चेयरमैन साहब बोले, हट, निकलो बाहर यहाँ से, भागो यहाँ से, तुमको हर चीज टूटी फूटी खाती पुरानी दिख रही है, क्रिकेट मैच को कबाड़ी बाजार बना दिया। अब आए सत्यनारायण की कथा कराने वाले तिलकधारी पंडित श्री श्री 108 पैदाइशी ताम लोट लोटन प्रसाद सत्यानासी काशी निवासी पंडित राधेश्याम उपाध्याय, जो सत्यनारायण की कथा कराते हैं, कैसे?
सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, इस प्रकार कलावती का पति कलावती को ढूंढता भया, मन मन भटकता भया, और कलावती के बिल्ले पर क्रोधित होकर इन वचनों को कहता भया, तू कहां गई थी, तेरा मर जाए सांवरिया, और श्री देवी की जय।
ये पहुंच गए क्रिकेट की कमेंट्री करने, अपने पूजा पाठ की पोथी पत्रा लिए हुए, माथे पर लंबा सा तिलक लगाए हुए, घंटा घड़ियाल और शंख बजाते हुए। जब इन्होंने क्रिकेट की कमेंट्री शुरू की तो ऐसा लगा जैसे गीता या महाभारत का प्रवचन चल रहा हो या सत्यनारायण की कथा हो रही हो। पंडित राधेश्याम उपाध्याय सत्यानाशी काशी निवासी।
दर्शकों, बड़े हर्ष का विषय है क्या आप श्री श्री 108 सत्यासी काशी निवासी पंडित राधेश्याम उपाध्याय से इस खेल का आंखों दिखा हाल सुन रहे? क्रिकेट अंग्रेजी शब्द है, आंग्ल भाषा का शब्द है। इसे हिंदी में कहते हैं गोल गट्टा में लकड़ पट्टा में तड़ा तड़ मार प्रतियोगिता। भोर का समय था, सूर्योदय के बाद सूर्य अपनी पूर्ण लालिमा को प्राप्त हो चुका था। भारतवर्ष और पाकिस्तान के खिलाड़ी क्रीड़ांगन में क्रीड़ा करते हुए श्वेत वस्त्रों को धारण किए ये खिलाड़ी, ये वृंद क्रीड़ांगन के सौंदर्य में वृद्धि करता भया। इमरान खान गेंद लेकर बॉलिंग करता भया, गवास्कर बैट लेकर बैटिंग करता भया, किंतु कठोर परिश्रम के बाद भी असफलता ही आत लगी। कोई किसी पर गोल नहीं कर पाया तो गवास्करस्य कपिलस्य नैव तुल्ये कदाचन, गवास्करस्य कपिलस्य नैव तुल्ये कदाचन, गवास्कर टुच टुच करते और कपिल देवो धड़ा धड़ा। और अब ये जलपान का समय हो गया है, शेष खेल जलपान के बाद ही प्रारंभ होगा। इति खेल प्रथमो अध्याय समाप्त है। बोल कपिल देव महाराज की जय।
जैसे ही कमेंट्री खत्म हुई तो चेयरमैन साहब गुस्से से बोले,
बाहर निकलो, निकलो यहां से, या क्रिकेट की कमेंट्री करने बुलाया तुम्हें या सत्यनारायण की कथा कराने।
अब आए मच्छिंदर भाई जानी देसी दवाई वाले, जो महाभ्रंगराज तेल वगैरह बेचते हैं, तरह तरह की रंग बिरंगी जड़ी बूटियां बेचते हैं, पुखराज मलंगा हरीरा शिलाजीत वगैरह वगैरह, और चाराने की पुड़िया में खोई हुई ताकत दिलाकर बूढ़े को भी जवान बना देते हैं, निर्बल को बली, बली को महाबली, महाबली को बजरंग बली, और बजरंग बली को मोहम्मद अली बना देते हैं। ये लोग सड़कों पर मजमा लगाते हैं, सांप और नेवले की लड़ाई दिखाते हैं, और रास्ते चलते लोगों को उनकी कमजोरी का फायदा उठाकर रोक लेते हैं।
ये मेहरबान साहिबन कदरदान, पीकदान पांदान थूकदान, जिस भाई ने हमारा दवा खाया दो दिन में हो गया पहलवान। ये हमारा दवाई धर्मेंद्र ने खाया, जितेंद्र ने खाया, देवानंद ने खाया, राजेंद्र ने खाया, जिसने नहीं खाया वो पछताया। जिस भाई को खाज हो खुजली हो खुजा खुजा के परेशान, उसके लिए हमारा इतम नंबर एक जालिम लोशन। ये जालिम लोशन सवेरे लगाइए शाम को खुजाइए। मियाँ की कद्र होती है बीबी के साथ दवा सर करती, मरने के बाद जिस भाई को चाहिए एक शीशी का कीमत 1.5 रुपया।
तो ये पहुंच गए क्रिकेट की कमेंट्री करने अपना पूरा झोला झंगड़ लेकर डमरू बजाते हुए। इनने सबसे पहले तरह तरह की रंग बिरंगी जड़ी बूटियां पुखराज मलंगा हरीरा शिलाजीत वगैरह और मरी हुई छिपकलियां चेयरमैन साहब की टेबल पर जमाई और डमरू बजाते हुए चालू हो गए मच्छिंदर भाई जानी देसी दवाई वाले।
ये मेहरबान साहिबन कदरदान, ये आप देख रहे क्रिकेट मैच बिटवीन हिंदुस्तान एंड पाकिस्तान। ये भोलेनाथ के नाम पे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम पे गावस्कर ने बल्ला उठा के घुमाए, गेंद बाउंड्री पार गई सिक्सर। गावस्कर ने शॉट मारा, गावस्कर के हाथ में मोचे, हाथ में दर्द हुआ, गावस्कर के हाथ में दर्द हुआ। तो साहिबान मेहरबान कदरदान, ये हाथ का दर्द, पैर का दर्द, हड्डी का दर्द, जोड़ का दर्द, इसके लिए हमारे टीम नंबर एक तेल मालिश। जिस भाई को चाहिए एक शीशी का कीमत 12 आना।
जैसी कॉमेंट्री खत्म हुई तो चेयरमैन साहब बोले,
निकल बाहर, निकलो यहाँ से, उठाओ अपना ये सब तंबू डेरा, ये महाभ्रंगराज तेल रंग बिरंगी जड़ी बूटियां पुखराज मलंगा हरीरा सुलाजी, ये सब क्या है? यहाँ क्रिकेट की कमेंट्री करने आए हो, दवाई बेचने आए हो?
अब आए रेलवे अनाउंसर साहब, जो रेलवे स्टेशन पर किसी ट्रेन के अराइवल या डिपार्चर का अनाउंसमेंट करते हैं। कैसे?
नई दिल्ली से मद्रास की ओर जाने वाला ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से 1 घंटे विलंब से आ रहा है। इस गाड़ी के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आने की पूरी संभावना है। धन्यवाद।
जब इन्होंने कमेंट्री शुरू की तो ऐसा लगा जैसे किसी सुपर फास्ट ट्रेन के अराइवल या डिपार्चर का अनाउंसमेंट हो रहा। रेलवे अनाउंसर,
योर अटेंशन प्लीज, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच होने वाला क्रिकेट मैच अपने निर्धारित समय से 1 घंटे विलंब से प्रारंभ होगा। यह मैच 3:56 पर प्रारंभ होगा। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर गावस्कर, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर कपिल देव और रवि शास्त्री आउटर पर खड़े हैं। कपिल देव ने सुपरफास्ट एक्सप्रेस की स्पीड से गेंद को फेंका और प्लेटफॉर्म को छोड़ दिया। इमरान खान आउट हो चुके हैं और यार्ड की तरफ जा रहे हैं। दर्शकों से अनुरोध है उन्हें यार्ड में जाने के लिए रास्ता दें। धन्यवाद।
जैसे ही कमेंट्री खत्म हुई तो चेयरमैन साहब बोले, व्हाट, बाहर निकलो, निकलो यहाँ से, यहाँ क्रिकेट का मैच हो रहा है या जीटी या तमिलनाडु आ रही है।
अब आए न्यूज रीडर।
कौन से न्यूज रीडर? या आकाशवाणी वाले न्यूज रीडर नहीं, रेडियो पाकिस्तान के न्यूज रीडर, वो जो बड़ी मोटी आवाज में लहराते हुए खबरें पढ़ते हैं। कैसे?
ये रेडियो पाकिस्तान है, अब आप शकील अहमद से खबरें सुनिए। पाकिस्तान के वजीर खजाना सारा खजाना लेकर दफा हो गए। वजीर आजम का कहना है कि अगर उन्हें आधा हिस्सा नहीं देंगे तो उन्हें फांसी पे लटका दिया जाएगा।
तो इन्होंने क्रिकेट की कमेंट्री कैसे की, मुलाहजा फरमाइए रेडियो पाकिस्तान के न्यूज रीडर।
ये दास्तान क्रिकेट मैच है, अब आप झूमरी तलैया में हो रहे क्रिकेट मैच का आखिरी हाल सुनिए। गवास्कर हाफ शर्टिंग किए हुए, पीछे से उनकी शर्ट बाहर निकली है, आगे से पेंट के अंदर खुशी हुई है, क्योंकि आगे से शर्ट फटी है पीछे से पेंट फटी हुई है। खेल शुरू हुआ, गवास्कर ने फुल टॉस गेंद पे आगे बढ़कर फट्टा घुमाया, गेंद पीछे छूट गई, बल्ला हाथ से छूट के आगे गिरा, इमरान के मुंह पे लगा, सामने के दो दांत टूट गए, सर फट गया, लेग अंपायर का लेग टूट गया, हेड अंपायर का हेड फूट गया। गेंद जोर से उछली, रवि शास्त्री कैच लेने उछके उनकी पेंट फट गई। टीम के कप्तान कपिल देव ने अपनी पेंट उतार के उनको दे दी और खुद चड्डी पे खेल रहे हैं। एक एक करके इंडिया की सारी टीम जीरो पे उड़ गई। टीम के मैनेजर का कहना है कि अगर भारत के खिलाड़ी इसी तरह जीरो पे आउट होते रहे तो एक दिन उन्हें क्रिकेट छोड़ के गिल्ली डंडा और कबड्डी खेलना पड़ेगा।
जैसे ही कमेंट्री खत्म हुई चेयरमैन साहब बोले, हट, निकलो, बाहर निकलो यहाँ से, यहाँ क्रिकेट की कमेंट्री चल रही है और तुम गिल्ली डंडा और कबड्डी घुसड़ रहे हो बीच में। चेयरमैन साहब बहुत देर से सोच रहे थे कि सब आलतू फालतू के लोग आ रहे हैं, कोई ढंग का कैंडिडेट नहीं दिख रहा है। इतने में क्या देखते हैं कि सामने से चनाजोर गरम बेचने वाले घूरे लाल जांगड़े चले आ रहे हैं। बोले, साहब हम बहुत अच्छी कमेंट्री सुनाएंगे आपको, चटपटी मसालेदार मजेदार, नींबू वीबू निचोड़ के प्याज वगैरह डाल के मजा आ जाएगा आपको। ये चनाजोर गरम बेचने वाले फेरी लगाकर गाना गाते हुए कागज की पुड़िया बना बनाकर बेचते हैं। ये लोग एक खास अंदाज में तुकबद्दी वाला गाना गाते हुए फेरी लगाते हैं। कैसे?
मेरा चना मना है आला, इसमें डाला गरम मसाला, इसको खाते नंद के लाला, घर में पहने मोहन माला, चना जोर गरम।
ये पहुंचे क्रिकेट की कमेंट्री करने। इन्होंने सबसे पहले चने की एक पुड़िया बनाकर चेयरमैन साहब को पकड़ा दी और तुकबंदी करते हुए अपने सुर में खेल का आंखों देखा हाल किस तरह सुनाया। मुलाजा फरमाए चना जोर गरम बेचने वाले घूरे लाल जांगड़े।
शुरू हुआ क्रिकेट का खेल, गेंद बल्ले का है मेल, रवि ने गेंद ले ली, खेल हो गए कैच आउट, तो गेंद लेके आ गए लल्ला, कपिल ने उठा के घुमाया बल्ला, भीड़ में देखो मच गया हल्ला, हो गए कैच आउट, बोले डर की है कि ये बॉल बिल्कुल चन्ने जैसी बॉल, क्रिकेट खेलो या फुटबॉल, हर जगह चने का रोल, चन्ना जोर गरम।
जैसी कमेंट्री खत्म हुई तो चेयरमैन साहब बोले, हट, बाहर निकलो, भगो यहाँ से, या चना जोर गरम बेचने आयो या कमेंट्री करने आयो। अब आए कान फोड़ तान तोड़ हबीब भाई कव्वाल एंड पार्टी। अपना पूरा ताम झाम लेके तबला पेटी हारमोनियम समेत, मुंह में पान रचा हुआ, सर पे गोल्ड टोपी, गले में रुमाल बंधा हुआ, इश्क और हुस्न की तकरार वाली कव्वालियों के मुकाबलेबाजी में जाने वाले सड़क छाप कव्वाल। जो गाते हैं तो उनका सुर कहीं जाता है और बाजे का सुर कहीं जाता है। तो हबीब भाई कव्वाल कानफो तानतोड़ मंडली ने अपने पूरे म्यूजिक के साथ खेल का आंखों देखा हाल किस तरह सुनाया। मुलाहजा फरमाइए कानफो तानतोड़ हबीब भाई कव्वाल एंड पार्टी।
सुनिएगा ये नगमा आंखों देखा है, ये हर तरफ जोर ही जोर, ये हर तरफ जोर ही जोर, किसका जोर, क्रिकेट का जोर, कहीं गेंद का जोर, कहीं बल्ले का जोर, बाकी हर जोर कमजोर।
तो इधर बल्ले से ये मारे, इधर बल्ले से ये मारे, उधर बल्ले से वो मारे, लगा दो आग बल्ले में, ना ये मारे ना वो मारे।
तो शक्त ऐसा मारा कपिल ना उनकी इकला चली, शक्त ऐसा मारा कपिल ना उनकी इकला चली, शक्त
जैसी कमेंट्री खत्म हुई तो चेयरमैन साहब ने उनके तबले पेटी हारमोनियम वगैरह बाहर फेंकवा दिए। बोले भागो यहां से, निकलो, यहां कव्वाली का मुकाबला हो रहा है, क्रिकेट की कमेंट्री हो रही है।
अब आया मोबाइल ऑर्केस्ट्रा। मोबाइल ऑर्केस्ट्रा यानी चलता फिरता ऑर्केस्ट्रा। यह ऑर्केस्ट्रा प्रायः आपके सड़कों पर, घरों के आंगनों में होली सावन के समय देखे जा सकते हैं। इनके प्रमुख वाद्यों में होता है कसा हुआ ढोल, मंजीरा और ताली। मैं समझता हूं इतनी तारीफ के बाद आप पहचान गए होंगे कि मैं किन लोगों का जिक्र कर रहा हूं। जी हां, जिक्र उन्हीं का हो रहा है जब ये लोग अपने ढोल मंजीरे के साथ ताली बजाते हुए किसी के घर पहुंचते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान ने इंडिया पर अटैक कर दिया हो। कैसे?
तेरे गोरे गोरे गालों पे घुंघर वाले बाल, तेरे गोरे गोरे गालों पे घुंघर वाले, अम्मा तेरी ले बलैया बाबा को बैठा, अम्मा तेरी ले बलैया बाबा को बैठा, तेरे गोरे गोरे गालों पे घुंघर वाले बाल, तेरे गोरे गोरे गालों पे घुंघर वाले।
सावन का महीना पवन करे सूर।
अलियाना भेंगी, आए पहुंचाना बीबी जी, आज सामान का इनाम।
आए जोड़ी जितेंद्र रेखा जैसी बनी रहे, आए आबाद रहो।
अलिया बीबी जी,
पता लगा बीबी जी ने डर कर घबराहट के मारे सारे घर के खिड़की दरवाजे बंद किए और भगवान के कैलेंडर के सामने हाथ जोड़ के बैठ गई, जैसे नाचने गाने वाले नहीं आए हो, कोई बहुत बड़ी आफत आ गई हो। तो ये लोग भी वहां पहुंच गए, कहां क्रिकेट की कमेंट्री करने। बढ़िया रंग बिरंगे साड़ी ब्लाउज पहने, हाथों में चूड़ियां, कानों में बड़े बड़े झुमके बरेली वाले पहुंच गए वहां पर कमेंट्री करने।
अलियाना चेयरमैन साहब, अरे पहुंचाना चेयरमैन साहब, जोगन बन जाऊंगी मैं, सही है तेरे कारण।
अले आना चेयरमैन साहब, पहुंचाना चेयरमैन साहब, सामन का इनाम।
चेयरमैन ने सोचा कि यहाँ तो अच्छे खासे इंटरव्यू चल रहे थे, ये नाचने गाने वाले कहाँ से आ गए। थोड़ी देर बाद क्या देखते हैं कि पूरी टीम कमरे के अंदर ताली बजाती हुई तैनात खड़ी है। तो इन लोगों ने क्रिकेट की कॉमेंट्री किस तरह की, मुलाजा फरमाइए। नूर जहां एंड पार्टी फ्रॉम भोपाल।
अरे नूर जहां, खेल शुरू हुआ?
यहाँ शुरू हो गया खेल।
गवास्कर बल्ला हिला तो चला आ रही है, देख जोर जोर से।
यहाँ बल्ला हिला तो चला आ रही है गवास्कर।
इमरान खान गली में खड़ा है, देख इमरान गली में खड़ा है।
गली में काय को खड़ा है, यहाँ मेन रोड पे आके क्यों नहीं खड़ा हो जाता? इतनी बड़ी जगह पड़ी है, वहाँ जाके मैदान में गली में खड़ा है।
फालतू बात मत कर, कमेंट्री करने दे। हाँ, चेयरमैन साहब कैसे घूर घूर के देख रहे अपन लोग का। हाँ,
चेयरमैन साहब ने जब इन लोगों की उल्टी सीधी कमेंट्री सुनी तो बुखार आ गया उनको, उनकी बैटरी डाउन हो गई, फ्यूज उड़ गया, सारी क्रिकेट कमेंट्री निकल गई। बोले चलो भगो यहाँ से, बाहर निकलो, ढोल मंजीरे समेत उनको बाहर कर दिया, गेट आउट। लेकिन आप इन्हें कुछ दें या नहीं दें, ये बेचारे लोग आपको दुआएं जरूर दे जाते हैं। चेयरमैन साहब को भी दुआएं देने लगे।
आय हाय हाय, आय हाय रे मेरे राजेश खन्ना, आय मेरे गोभी के फूल, अजियो मेरे लल्ला, अजियो मेरे राजा।
तुम्हें और क्या दूं? बदल के सिवा तुमको हमारी उम्र लग जाए, तुमको हमारी उम्र लग जाए, लग जाए दो हजार साल साल के दिलो एक हजार, तुमको हमारी उम्र लग जाए, तुमको हमारी उम्र लग जाए।
किसी भी रेलवे स्टेशन पर सबसे ज्यादा गर्मा गर्मी उस वक्त होती है जब कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकती है। इस समय सबसे व्यस्त आदमी होता है टीटी या टिकट बाबू, जिससे आप कुछ भी पूछें आपको जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि धंधे का टाइम रहता है। वो बेचारा दो दुनी चार दुनी आठ करने के चक्कर में लगा रहता है, आपको समय कैसे देवे। किसी ट्रेन के अराइवल का अनाउंसमेंट हो रहा था।
बॉम्बे से मद्रास की ओर जाने वाला ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से प्लेटफॉर्म नंबर एक पर आ रहा है।
जैसे ही गाड़ी प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी, एक सरदार जी टीटी से पूछने लगे,
ओए मैग जी जनाब, ए गड्डी कौन सी है?
टीटी चार्ट देख रहा था, उनको लिफ्ट नहीं दी।
ओए तुसी बहरे हो गया, ओ मैग जी सुनाई नहीं देता?
क्या है?
ओए पुत्र ए गड्डी कौन सी है?
पंजाब मेल है।
ओ कौन सी गड्डी है?
टीटी झल्लाकर बोला, अरे भाई मेल है, मेल ट्रेन है, मेल ट्रेन। जैसे ही सरदार जी ने सुना कि ये मेल ट्रेन है, तो टिकट निकालकर अपनी श्रीमती जी को देते हुए उनसे बोले,
ओए सुनिए ले टिकट दार, ए मेल ट्रेन है, मैं से जा रहे हैं, तुसी फीमेल ट्रेन विच आ।
सरदार जी मेल ट्रेन में चढ़ गए, गाड़ी चलने लगी। थोड़ी देर बाद टीटी सबका टिकट चेक करता हुआ इनके पास आया। सभी लोग टीटी को बड़ा रिस्पॉन्स दे रहे थे, कोई बैठने के लिए कह रहा था, कोई सिगरेट पिला रहा था, लेकिन सरदार जी ने टीटी को बिल्कुल लिफ्ट नहीं दी। आराम से बर्थ पर लेटे हुए गाना गा रहे थे और अपनी दाढ़ी में से जुएं निकाल निकाल कर मार रहे थे। टीटी ने सरदार जी से टिकट मांगा, उन्होंने लापरवाही से निकाल कर टिकट दे दिया।
ओए ले पुत्र,
टीटी को बड़ा गुस्सा आया, डांटते हुए बोला, आपको शर्म आनी चाहिए, आप पढ़े लिखे।
ओए पुत्र होया कि?
अरे होने क्या, ये टिकट आपने इतनी लापरवाही से रखा है, अगर गुम जाता तो। सरदार जी ने जेब से एक और टिकट निकाला जो उन्होंने सेफ्टी के लिए खरीद लिया था कि अगर गुम जाए तो एक और टिकट रहे, और टीटी की ओर बढ़ा दिया। टीटी टिकट देखकर गुस्से से बोला, अगर ये टिकट भी गुम जाता तो आप क्या कर लेते। सरदार जी ने एक और टिकट निकालकर टीटी की तरफ बढ़ा दिया। टीटी को बड़ी हंसी आई और बड़ा अजीब लगा कि कैसा आदमी अकेला सफर कर रहा है, लेकिन तीन तीन टिकट खरीद रखे कि अगर एक टिकट गुम जाए तो सेफ्टी के लिए दूसरा टिकट रहे। टीटी सरदार जी से बोले, जनाब मैं ये कह रहा हूँ कि आपने ये तीनों टिकटें एक साथ रखे हुए हैं, अगर आपकी ये जेब कट जाती, सारे टिकट गुम जाते तो आप क्या कर लेते। अब तो सरदार जी का दिमाग खराब हो गया, बर्थ पर से नीचे कूद के आ गए और टीटी पर बरस पड़े।
ओए बातमीज़ पुत्र, खोते दी औलाद, बकवास ना कर।
ये चिल्लाते हुए सरदार जी ने अपने दूसरे जेब से एक कागज निकाला और टीटी की ओर बढ़ा दिया। टीटी ने उसे खोल कर देखा, वो रेलवे का फ्री पास था। एक देहाती ने एक अंग्रेज अफसर की बहुत सेवा की। वापस जाते वक्त उस अंग्रेज ने देहाती को बहुत सारे रुपये दिए और बोला,
वल अब हम जाते हैं।
यह सुनकर देहाती बड़ा दुखी हुआ और बोला,
सरकार आपने तो रुपया पैसा दो, मानो हमें जानवर ही समझो, जाती वक्त आपने हमें बैल कह दई।
अंग्रेज हंसकर बोला,
अब हम चलना मांगता।
देहाती खुश होकर बोला,
हाँ तो ऐसी कहो हुजूर के तुम्हें चलना चाहिए, कौन सो चलना चाहिए, गेहूं छानबे को के चना छानबे को।
अंग्रेज हंसते हुए बोला,
oh, you're a fool. तुम तो एकदम फूल है।
देहाती हाथ जोड़कर शर्माते हुए बोला,
हुजूर फूल तो आप हो, हम तो केवल कांटा है।
एक साहब ने एक नया नया नौकर रखा, उसे बहुत सारी हिदायतें दी, बुलाकर समझाया, देखो ऐसा है हमारी बहुत कम बोलने की आदत है, हम कोई भी काम होता है उसको शॉर्ट में बताते हैं।
जी बाबूजी हम सब काम कर लेते हैं, हमको 20 साल का एक्सपीरियंस है, हमने बहुत बड़े बड़े लोगों के यहाँ काम किया है।
ठीक है, ऐसा है बहुत सा काम तुम्हें अपने मन से करना पड़ेगा, जैसे हम तुमसे कहेंगे कि कपड़े धो दो तो ये नहीं कि कपड़े धो दिए, तुम्हें अपने मन से उन्हें सूखने डालना पड़ेगा, फिर उनमें अपने मन से प्रेस करनी पड़ेगी, इन जरा जरा सी चीजों के लिए हम तुमसे नहीं कहेंगे, समझे।
अरे बाबूजी हम सब समझ गए, हम सब काम कर लेंगे, आप हमारा काम देखने बस, फिर बोलना आप, बस फिर देखना आप।
एक बार साहब की बहुत बुरी तरह तबीयत खराब हुई, बिस्तर पर पड़ गए, नौकर को बुलवाया, इधर आओ रूखा राम।
जी बाबूजी
एक काम करो, जरा डॉक्टर को बुला लाओ और ये 300 रुपए ले जाओ, दवाई ले आना।
अच्छा बाबू, ये बहुत अच्छा, मैं अब भी जाऊँ।
नौकर सुबह का गया हुआ, बड़ी देर हो गई, शाम को लौट कर आया। साहब गुस्से से बोले, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, सुबह के गए थे शाम को लौट कर अब आ रहे हो, तुम्हें जरा भी परवाह नहीं है हमारी।
फालतू बात मत करो, तुम्हारे इसे काम से गए थे।
हमारे काम से गए थे? किस काम से गए थे? जरा सा काम था
बा, ऐसे कैसे जरा सा काम था? पैसे चाहिए, 200 रुपए निकालो।
300 रुपए तो दिए थे, 200 रुपए और काय के? नौकर अपनी अकलमंदी जताते हुए बोला,
वाह 300 रुपए में क्या होता है, 300 रुपए तो लकड़ी की चाल वाले को दे दिए, 200 रुपए अभी कफन वाले की उधारी चुकाना, वो कौन चुकाएगा?
इस हादसे के बाद उस नौकर की कुछ ऐसी टेंडेंसी हो गई कि वो नौकर कहीं भी कोई मरे, मरे गड़े की खबर लाकर अपने मालिक को जरूर सुनाता था, और वो भी ऐन वक्त पर जब वो खाना खा रहे होते थे। एक बार साहब सब्जी रोटी खा रहे थे कि नौकर दौड़ता हुआ आया,
बाबूजी कमाल हो गया, बाबूजी कमाल हो गया।
क्या हुआ?
अरे बाबूजी, वहाँ ट्रक से न्यू मार्केट में एक आदमी कुचल के मर गया, पूरी सड़क पर लाल लाल खून बह रहा था, गरम गरम एकदम चटक लाल रंग का खून, बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसा जी आपकी आलू प्याज की सब्जी का वसा दिख रहा, तरी दिख रही है।
क्या बकता बेवकूफ कहीं के?
अरे बाबूजी मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, अभी पूरी बात तो सुनो, आपने पूरी बात नहीं सुनी, ट्रक ने उस आदमी की खोपड़ी इतनी जोर से कुचल दी थी, बिल्कुल चटनी बन गई थी जैसी कि आप आम की चटनी खा रहे हो।
बाबूजी का खाना सत्यानाश। फिर एक बार दौड़ता हुआ आया, बाबूजी नाश्ता कर रहे थे।
अरे बाबूजी कमाल हो गया।
क्या हो गया?
अरे बाबूजी अभी वहाँ से एक बिल्ली आ रही थी, उसने एक बहुत बड़ा चूहा दांत से मुंह में दबा लिया था, लाल लाल खून निकल रहा था, बिल्कुल टमाटो सास दिया था, चूहा भी दांत के बीच में बिल्कुल एकदम सैंडविच बन गया था, ऐसा जैसा आप खा रहे हो।
बाबूजी का नाश्ता सत्यानाश। तो साहब ने परेशान होकर नौकर से कहा, ये क्या है, कोई भी मरता है तो हमको आके खबर देते हो, गली का कुत्ता भी मरता है तो तुम हमको आके खबर देते हो, हमारा कोई सगा रिश्तेदार हो जाते।
अरे बाबूजी कोई मरेगा तो खबर नहीं देंगे क्या? ये तो बहुत गलत बात है।
कुछ भी हो, ये बेवकूफी की खबर लाके हमें मत सुनाया करो।
फिर क्या करें?
अगर तुमको किसी के मरने की खबर सुनानी भी हो तो तुम ये बोला करो कि फला आदमी पैदा हो गया है, हम समझेंगे कि मर गया।
अरे बाबूजी गजब करवा रहे हो आप, कोई मरेगा तो हम उसको बोल देंगे कि पैदा हो गया।
हम तुमसे जैसा कह रहे हैं वैसा करो, मरने की खबर लाके हमारा सब खाना पीना सत्यानाश कर देते हो, जैसा हम कह रहे हैं वैसा करो।
ठीक है बाबूजी, हमको क्या है, कोई मरेगा तो हम उसको पैदा कर देंगे, हमारे बाप का क्या जाता है।
हाँ ठीक है, हम जैसा कह रहे हैं वैसा करो। एक बार ये साहब अपने दोस्त के साथ बैठ कर बातें कर रहे थे कि भाई क्या हाल है, बहुत दिन बाद मिले हो, कैसे हो, कि उनका नौकर जोर जोर से दहाड़े मार कर रोता चिल्लाता हुआ आया।
बाबूजी मेरी दुनिया बर्बाद हो गया बाबूजी।
अबे हुआ क्या? अरे अबे रोता ही रहेगा या कुछ बताएगा भी, हुआ क्या?
अरे बाबूजी मत पूछो, मेरी दुनिया उजड़ गई बाबूजी।
अरे भाई हुआ क्या, कुछ बताओगे भी या रोते रहोगे?
बाबूजी कल रात को 3 बजे मेरा बाप पैदा हो गया।
क्या बकता है?
बाबूजी आपकी कसम, भगवान की कसम, आप किसी की भी कसम खिलाओ, दुर्गा माता की कसम, शंकर जी की कसम, कल रात को 3 बजे मेरा बाप पैदा हो गया।
तेरा बाप पैदा हो गया?
बाबूजी वो कल आपसे बात हो रही थी ना, आपसे बात हो रही थी ना, सही में मेरा बाप पैदा हो गया बाबूजी, कल रात को 3 बजे।
अच्छा अच्छा बाप पैदा हो गया, तो क्या चाहिए तुम्हें?
बाबूजी बाप पैदा हुआ तो उसका इंतजाम करना पड़ेगा ना, 300-400 रुपए दे दो, हफ्ते भर की छुट्टी हो, हम नहीं आएंगे हफ्ते भर, तुम दूसरे आदमी से काम करवा लेना, तुम्हारा खाना पीना जो भी दूसरा आदमी बना देगा, हमको जाना पड़ेगा।
अच्छा अच्छा ठीक है, हफ्ते भर मत आना, ये लो 500 रुपए, जाओ। नौकर रुपए लेकर जाने लगा, मालिक के दोस्त को बड़ी फिक्र हुई कि ये क्या चक्कर है कि बाप पैदा हो गया और इन्होंने उसे इंतजाम के लिए 500 रुपए भी दे दिए, सरासर अंधे है कि बाप पैदा हो गया। मालिक के दोस्त ने नौकर को बुलाया, इधर आओ।
जी
तुम अभी क्या बात कर रहे थे?
तुमने सुना नहीं क्या बात कर रहे थे?
नहीं, वो कौन पैदा हो गया?
मेरे पिताजी पैदा हो गए, मेरे फादर, मेरे डैडी।
अच्छा तुम्हारे पिताजी पैदा हो गए?
हाँ मेरा बाप पैदा हो गया है, रात को 3 बजे पैदा हुआ था, घड़ी देखी थी मैंने।
तुम्हारा बाप पैदा हुआ है रात को 3 बजे है?
हाँ मेरा बाप पैदा हुआ रात को 3 बजे, स्टैम्प पेपर पर लिख के दूं क्या? विश्वास नहीं कर रहा।
अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी अम्मा किधर है? अम्मा किधर है तुम्हारी
अम्मा? अरे अम्मा का पूछ रहा, उसको पैदा हुए तो 8 साल हो गए।
तुम्हारा बाप कल पैदा हुआ है, तुम्हारी उम्र कितनी है?
हमारी उम्र, चलो अब तुम पूछ रहे हो तो ये भी बता देते हैं, हमारी उम्र 36 साल है।
तुम्हारी उम्र 36 साल है, तुम्हारा बाप कल पैदा हुआ है?
हाँ हमारी उम्र 36 साल है, हमारा बाप कल पैदा हुआ है, और हमारी माँ 8 साल पहले पैदा हुई थी।
तुम्हारी माँ 8 साल पहले पैदा हुई थी?
हाँ हाँ हमारी उम्र 36 साल है, हमारा बाप कल पैदा हुआ है, और हमारी माँ 8 साल पहले पैदा हुई थी। बोलो तुमको क्या तकलीफ है?
ठीक है एक बात और बता दो, क्या तुम्हारा क्या हाल है, तुम्हारा क्या हाल है?
अरे यार यही मत पूछो।
क्यों?
अरे यार यदि ऐसे ही हाल चला ना, यही हाल रहा ना, तो एक दो दिन में हम भी पैदा हो जाएंगे।
आपने पंचतंत्र और हितोपदेश की कहानियां सुनी होंगी, पढ़ी होंगी, इनमें जानवरों के बड़े अच्छे अच्छे किस्से रहते हैं। अब मैं आपको कलयुगी पंचतंत्र और कलयुगी हितोपदेश की कहानियां सुनाता हूं। एक चूहे और हाथी में लड़ाई हो गई। हुआ यूं कि यह चूहा बड़ा आशिक मिजाज था और दूसरे मोहल्ले में अपनी गर्लफ्रेंड चूहिया से मिलने जाया करता था। इसी मोहल्ले में एक हाथी भी रहा करता था। जब हाथी को इस बात का पता लगा कि एक चूहा उनके मोहल्ले में रहने वाली चूहिया को तंग करता है, तो उसने एक दिन चूहे को चूहिया के सामने ही बुरी तरह फटकार दिया कि यहां आशिकी करने आते हो, अगर अब दोबारा इस मोहल्ले में दिखे तो हाथ पैर तोड़कर हाथ में दे दूंगा। चूहा अपनी माशूक के सामने इतनी बात कैसे बर्दाश्त कर सकता था। उसे भी बड़ा गुस्सा आया कि यह हाथी तो विलेन का रोल कर रहा है। चूहे ने भी जोश जोश में हाथी को फटकार दिया कि अपने मोहल्ले में तो सभी शेर होते हैं, यहां जबरन की दादागिरी दिखा रहे हो, कभी हमारे मोहल्ले में आओ तब देखेंगे। हाथी चूहे की चेतावनी सुनकर तिलमिलाकर रह गया। उसने कहा कि बेटा ठीक है, आज तो मैंने तुझे छोड़ दिया, लेकिन कभी तेरे मोहल्ले में ही आकर तुझसे हिसाब बराबर करूंगा। चूहा वापस तो आ गया, लेकिन उसके दिल में धुकधुकी लगी रहती थी कि कहीं यह हाथी उसके मोहल्ले में ना आ जाए। काफी दिनों तक कुछ नहीं हुआ, सब ठीक चलता रहा। एक दिन अचानक जब चूहा अपने घरवालों के साथ अपने बिल के अंदर डाइनिंग टेबल पर लंच ले रहा था, उस समय बाहर से किसी के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आई। चूहे ने डरते डरते बिल में से झांक कर देखा तो दंग रह गया। बाहर हाथी खड़ा था और जोर जोर से चिल्ला रहा था कि चूहे के बच्चे निकल बाहर, आज तेरी मौत आई है, उस दिन तो तू बच गया था, देखता हूं आज तुझे कौन माई का लाल बचाता है, जिसको भी बुलाकर लाना हो ले आ। चूहे की हालत ऐसी हो गई कि काटो तो खून नहीं, डर के मारे बेचारा पसीना पसीना हो गया, थरथर कांपने लगा। वापस भागकर बिल के अंदर आया और बिल के अंदर ही अंदर के रास्तों से बाकी कई चूहों को इकट्ठा कर लिया और अपने इश्क की दुहाई देते हुए उन्हें बता दिया कि यार मैं अपनी चूहिया से मिलने गया था तो एक हाथी से लड़ाई हो गई, मैंने उसको उसी के मोहल्ले में धमकी दे दी कि अपने मोहल्ले में तो सभी शेर होते हैं, कभी हमारे मोहल्ले में आओ तब देखेंगे तुम्हें। तो वो हाथी आ गया है और अब तुम लोगों की मदद की जरूरत है। सब चूहे बोले कि तुम घबराओ नहीं, हम लोगों के होते हुए वह हाथी तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। मुसीबत में भाई भाई सब एक हो जाते हैं और फिर ये तो इश्क का मामला है, दिलदा मामला है। सारे चूहे इकट्ठे हो गए, अपनी अपनी चोंच में साइज के हिसाब से लठ दबा लिए और पूरा खिरका का खिरका हाथी से मुकाबला करने के लिए बिल के बाहर चल पड़ा। जब बाहर आए तो हाथी गुस्से से चिंगाड़ता हुआ चूहों के पीछे दौड़ा, सारे चूहे इधर उधर भागे, कुछ चूहे घबराकर एक पेड़ पर चढ़ गए। हाथी ने गुस्से से चिंगाड़ते हुए उस पेड़ में अपना सर मारा तो वही चूहा जिससे हाथी की लड़ाई हुई थी पेड़ पर से पके आम की तरह हाथी की पीठ पर टपका, टप। जैसे ही वह चूहा हाथी की पीठ पर गिरा बाकी चूहे जोर से चिल्ला पड़े,
अबे मसल के रख दे कुचल डाल।
हुआ यूं कि मच्छर अपने पिता से अपनी शादी के बारे में कह रहा था, मेरी 26 साल की उम्र हो गई, मैंने 26 बसंत देख ली और आपने अभी तक मेरी शादी नहीं की है, जबकि मेरे साथ के मच्छर दो दो तीन तीन बच्चों के बाप बन गए, मैं अभी तक कुंवारा हूँ। पिताजी बोले, बेटा मच्छू ऐसा है, मच्छू शायद घर का नाम था जैसे पप्पू ढब्बू वगैरह होता है, बोले ऐसा है हम तुम्हारी हॉरोस्कोप दिखवा रहे हैं, कुंडली मिला रहे हैं, तुम मंगली हो, जहां सही सेटिंग फिटिंग जमेगी वहीं तुम्हारी शादी करवा देंगे। मच्छर बोला कि अगर आप इस तरह से मेरी हॉरोस्कोप दिखाते रहे तो मेरी तो जिंदगी भर शादी नहीं हो पाएगी, मैं तो कुंवारा ही रह जाऊंगा। जहां भी मेरी शादी की बात चलती है आप कुछ ना कुछ अड़ंगा लगा देते हैं। अभी कुछ दिनों पहले मच्छर प्रसाद गंदगी वाले मॉस्किटो जी की लड़की से मेरी बात चल रही थी,
शहर के सबसे बड़े गंदे नाले के मालिक हैं। इतना दहेज दे रहे थे, 20 गटर, 25 छोटे मोटे नाले और 12-15 कचरों के ढेर, लेकिन यहाँ भी आपने अड़ंगा लगा दिया कि गोत्र नहीं मिलता है। पिताजी बोले, अरे भाई, केवल जायदाद से कुछ नहीं होता है, जात पांच भी तो देखना पड़ता है। वे लोग क्यूलेक्स हैं और अपन लोग एनोफिलीज हैं, तुम्हारी शादी केवल एनोफिलीज में ही होगी। बेटा गुस्से से बोला, क्या क्यूलेक्स और क्या एनोफिलीज करते हैं आप, मच्छर मच्छर सब एक होते हैं, चाहे क्यूलेक्स हो या एनोफिलीज, मैं तो शादी कर रहा हूँ, लव मैरिज कर रहा हूँ। पिताजी बोले, क्या क्यूलेक्स लोगों में शादी करोगे? बेटा बोला, अरे क्यूलेक्स और एनोफिलीज छोड़िए, मैं तो मच्छर जाति से बाहर ही शादी कर रहा हूँ। मच्छर जाति से बाहर शादी कर रहे हो? किससे? मक्खी से शादी कर रहा हूँ। मक्खी से शादी कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? कहाँ हम लोग गंदे नालों में रहने वाले नीच जात के लोग, और कहाँ मक्खी ऊंचे जाति की। उसके बाप को एतराज नहीं होगा? उसके बाप को एतराज हो या ना हो, मक्खी तो तैयार है, मैं तो मक्खी से शादी कर रहा हूँ, और वो भी आम के पेड़ वाली मक्खी से। आम के पेड़ वाली मक्खी से? कहाँ आम के पेड़ की मक्खी और कहाँ तुम मरियल से, कितना अंतर है साइज में, कहीं से जोड़ी नहीं बैठती। मैं साइज में छोटा हूँ तो क्या हुआ, मेरा दिल तो बड़ा है, मुझे उस मक्खी की नीली नीली आंखें बहुत अच्छी लगी, मुझे उससे प्यार हो गया। खैर साहब, मच्छर ने बगावत कर दी और आम के पेड़ वाली मक्खी से शादी कर ली। मच्छर भाई बड़े स्मार्ट बन के इतर वगैरह लगा के जब पहली मुलाकात के लिए मक्खी के कमरे में घुसे तो सारा जोश ठंडा हो गया, क्योंकि मक्खी दुल्हन बनी बिस्तर पर बैठी थी लेकिन ओडोमास लगा रही थी। आज भी हमारे स्कूलों में अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, भले ही हिंदी मीडियम में पढ़ाई जाए, समझ में आए चाहे ना आए, लेकिन लोग अंग्रेजी जरूर पढ़ते हैं। और गांव के स्कूलों में जो अंग्रेजी की क्लास चलती है वो अपने आप में एक अलग चीज होती है। मास्टर साहब ने खुद भले ही कभी अंग्रेजी नहीं पढ़ी हो, लेकिन अंग्रेजी का पीरियड जरूर लेते हैं। मैं आपको अंग्रेजी की एक ऐसी ही क्लास में ले चलता हूँ, 8वीं की क्लास है, अंग्रेजी का पीरियड चल रहा है और गुरुजी लड़कों को पढ़ा रहे हैं। गुरुजी ने 3-4 पेंसिलें टेबल पर से उठाई और चिल्लाकर लड़कों से पूछा, भाटार दीज, तो पूरी क्लास ने एक सुर में जवाब दिया,
गुरुजी 3-4 पेंसिल।
गुरुजी को सुनाई दिया, दीज आर पेंसिल, बोले बैठ जाओ। इसी क्लास में एक बब्बन नाई का लड़का पढ़ता है जिसने 8-वर्षीय योजना मनाई और क्लास का सबसे सीनियर स्टूडेंट है। बब्बन नाई के इस लड़के को अंग्रेजी पढ़ने का बहुत शौक है, इसलिए जिस दिन भी उसे पता लगता है कि आज स्कूल लगा है तो वो ग्राहकों की आधी कटिंग छोड़कर अपनी उस्तरे कैंची वाली पेटी सहित सीधा स्कूल पहुंच जाता है। गुरुजी नाई के इस लड़के से बहुत चिढ़ते हैं, क्योंकि उसका बाप गुरुजी की मुफ्त में शेव नहीं बनाता है, पैसे ले लिया करता है। जैसे ही गुरुजी का ध्यान बब्बन नाई के लड़के की तरफ गया तो उनका दिमाग खराब हो गया, मूड ऑफ हो गया, पूरी क्लास पर जोर जोर से चिल्लाने लगे,
सुगर कहीं गए, तुम लोग कुछ पढ़ते लिखते नहीं हो, हर साल फेल हो जाते हो, स्कूल की कितनी बदनामी होती है, और ये हरामखोर बब्बन नाई की औलाद,
साले की दाढ़ी मूंछ निकले आई,
शादी हो गई, लड़के बच्चे हो गए, शर्म नहीं आती, इस साल फिर फेल हो गया, सुगर कहीं का, 8वीं क्लास में 8वीं खा ले नालायकी। अरे तेरा बाप तो हमसे भी कटिंग के पैसे ले लेता है रे, गुरु को दान देना चाहिए तो उल्टे गुरु से पैसे लेते हो, साले कभी पास नहीं होगा, जिंदगी भर 8वीं क्लास में सड़ जाएगा नाला कहीं का, चल खराब खराब जाए बेंच पे, बता भाई ओयू आने क्या होता है भाई ओयू।
लड़के ने बेचारे ने अपनी इज्जवाज बिकाज वाली स्टाइल में जवाब दिया,
सर भाई ओयू यू यू माने तुम,
हम
नहीं सर, तुम नहीं तुम,
वाक्य में प्रयोग करके बता नालायक कहीं के, ऐसे समझ में नहीं आता, मेक ए सेंटेंस ऑफ इट,
सर यू आर माय वाइफ,
यू आर माय वाइफ,
सुगर कहीं के, हम क्या तुम्हारी घरवाली है, तुम्हारी वाइफ है, ना पढ़ना ना लिखना कुछ नहीं बनता तुम थे, चलो नाउन की परिभाषा बताओ,
व्हाट इज नाउन, चलो बता।
नाउन कोर्स में नहीं था, आउट ऑफ सिलेबस था, फिर भी गुरुजी ने पूछ लिया, क्योंकि बब्बन नाई के उस लड़के से चढ़ते थे गुरुजी, कटिंग के पैसे ले लिया करता था। लड़के ने भी गुरुजी की बैत के डर से अपना दिमाग लगाकर नाउन की परिभाषा बता दी,
सर नाउन इज दी वाइफ ऑफ नउआ जो घर घर दिए तो बुला हुआ।
हंसी का खजाना, ठहाकों का संसार आपके लिए सजाया है ओपी द्विवेदी ने। हंसिए, कहकहे लगाइए, कॉमेडी की दुनिया में आइए ओपी द्विवेदी के साथ ओपी द्विवेदी के संग।
एक थे घिनौ लाल जी, यथा नाम तथा गुण, बहुत ही घिने थे, हमेशा गंदे रहा करते थे, पानी से उन्हें परहेज था, वो कभी कभी पानी पी जरूर लेते थे लेकिन छूते कभी नहीं थे, फिर नहाने की बात सोचने का तो सवाल ही नहीं उठता है। जब वे पैदा हुए थे तो उन्हें पहली बार अस्पताल वालों ने नहलाया था और अब शायद आखिरी बार उनके मरने पर नगर निगम वाले ही उनका स्नान कराएं। घिनौ लाल जी का और गंदगी का चोली दामन का साथ है, जब वे कहीं से निकलते हैं तो फौरन पता लग जाता है कि आसपास कहीं से घिनौ लाल जी गुजर रहे हैं, क्योंकि बदबू का इतना जोरदार भपका आता है कि ऐसा लगता है जैसे कोई गटर लाइन फूट गई हो। वो कुछ खाएं या नहीं खाएं लेकिन कभी दुबले नहीं होते हैं, क्योंकि मैल की एक दो इंच परत हमेशा उन पर चढ़ी रहती है। उनकी इस गंदगी से परेशान होकर जनता ने लोकसभा में भी एक बार प्रश्न उठवा दिया कि क्या सरकार जबरदस्ती घिनौ लाल जी को नहला नहीं सकती है, किंतु जब सरकार ने इस बात पर विचार किया तो दो कठिन समस्याएं उठी। पहली समस्या यह कि यदि घिनौ लाल जी के नहलाने का इंतजाम किया भी जाए तो कई मन डिटर्जेंट पाउडर लगेगा और सरकारी बजट जो पहले से ही घाटे में है और घाटे में चला जाएगा। दूसरी समस्या यह कि घिनौ लाल जी को नहलाने के बाद उनके धौन का मैल भरा पानी नदी और तालाबों में गंभीर जल प्रदूषण उत्पन्न कर देगा और सरकार का ध्यान गंगा नदी के जल प्रदूषण से हटकर घिनौ लाल जल प्रदूषण की ओर चला जाएगा। हुआ यूं कि एक दिन घिनौ लाल जी ने अखबार में नगर निगम का एक इश्तहार पढ़ा कि जो आदमी हमारे कांजी हाउस के एक जानवर के साथ उसी के कमरे में 24 घंटे गुजार लेगा उसे 501 रुपए का नगद इनाम मिलेगा। हुआ ऐसा कि इस जानवर ने सफाई अभियान के विरोध में हड़ताल कर रखी थी और अपने कमरे से कभी बाहर नहीं निकलता था, यहां तक कि अपनी दैनिक क्रियाएं भी उसी कमरे में पूरी करता था। यह जानवर था पीआईजी पिग, यानी सुअर। कई लोगों ने इनाम जीतने की कोशिश की लेकिन उस कमरे की गंदगी और बदबू के कारण इनाम नहीं जीत पाए। 24 घंटे तो दूर, उस कमरे में कोई 24 मिनट तक नहीं रुक पाया। घिनौ लाल जी भी 501 रुपए का नगद इनाम जीतने के लिए चल पड़े लेकिन घिनौ लाल जी जैसे ही उस कमरे में अंदर घुसे तो सुअर बाहर आ गया। बस स्टॉप पर तरह तरह के लोग खड़े रहते हैं मगर सबसे अधिक मजेदार होते हैं आवारा किस्म के वे लड़के जो रोज लड़कियों के पीछे पीछे उनके कॉलेज या ऑफिस तक नियम से उन्हें छोड़ने और लेने जाते हैं। ये लोग समय के इतने पाबंद होते हैं कि आप इन्हें बस स्टॉप पर देखकर अपनी घड़ी मिला सकते हैं। ये लोग रोज मजनुओं की तरह स्टॉप पर खड़े खड़े घंटों फील्डिंग करते रहते हैं, इंतजार करते रहते हैं, भले ही कितनी बसें छूट जाएं, वो अब चल चुके हैं, वो अब आ रहे हैं, यही सोचकर दिल को बहला रहे हैं। इसी तरह के एक मजनू बस स्टॉप पर आए और पान की दुकान से टिक के खड़े हो गए।
अबे पान बना देना, ठंडा इलायची चमन बाहर बड़ी पत्ती मल के और एक सिगरेट दे देना।
फिल्मी स्टाइल में सिगरेट जलाई और पास खड़े दूसरे दुबले पतले मरियल से लड़के से रौब से पूछा,
अबे निकल गई क्या?
कौन बस?
अबे बस नहीं बे, हम मंजू का पूछ रहे हैं।
अच्छा मंजू की बात कर रहे हो, अभी नहीं निकली, हम भी तो उसी के लिए खड़े हैं।
अबे आप फालतू बात नहीं करना और मंजू की तरफ हाथ उठा के भी देखो ना तो हाथ पर तोड़ के हाथ में दे दूंगा।
यार काले छोड़ो यार, मंजू की बात कौन कर रहा है, हम तो उसको अपनी बहन जैसा समझते, हम तो उसकी सहेली की बात कर रहे हैं।
एक बड़े मियां थे, हमेशा पान खाते रहते थे, लगभग बहरे थे। जब वो कान में मशीन लगाते थे तब बड़ी मुश्किल से उन्हें सुनाई देता था, ऊंचा सुनते थे, और अगर मशीन नहीं लगाते थे तो बिल्कुल सुनाई नहीं देता था। उनकी बेगम कुछ बोलती थी वो कुछ सुनते थे। उनके मोहल्ले में एक साहब कई दिनों से बीमार पड़े हुए थे, पूरा मोहल्ला उनकी तबीयत पूछ आया था लेकिन बड़े मियां उनकी तबीयत पूछने नहीं जा पाए थे। उनकी बेगम इस बात से बहुत नाराज थी और एक बार तो उनके पीछे ही लग गई।
आई मैं कहती हूँ क्या बदनामी करवा गए, आज देखते नहीं आते उस बुढ़े को, आई पूरा मोहल्ला उसकी तबीयत देखाया लेकिन तुम नहीं गए, और ये बुढ़ा भी तो पता नहीं कैसा है, आई सालों से बीमार पड़ा हुआ लेकिन मरता भी तो नहीं है, पता नहीं कौन सी हमार बूटी पी के आया।
आखिरकार बड़े मियाँ अपने कान में मशीन लगाकर मोहल्ले में उस बीमार को देखने के लिए चल पड़े। अभी थोड़ी दूर ही पहुंचे थे कि उन्हें एहसास हुआ कि उनके कान की मशीन खराब हो गई और उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है, लेकिन मरीज को देखना बहुत जरूरी था, अगर वो मरीज को बिना देखे पहुंचते तो बेगम फिर चिल्लाती। इसलिए उन्होंने सोचा कि अपन मरीज से बहुत कम बात करेंगे। यह सोचकर उन्होंने अपने मन से कुछ प्रश्न बना लिए और उसके उत्तर भी बना लिए। जैसे अपन पूछेंगे कि अब आपकी तबीयत कैसी है, तो मरीज कहेगा कि भाई अब ठीक है। अपन कहेंगे चलिए अच्छा है। अपन पूछेंगे किस डॉक्टर का इलाज चल रहा है, तो वो कहेगा फला डॉक्टर का इलाज चल रहा है। अपन कहेंगे भाई ये तो बहुत ही अच्छा डॉक्टर है। ये सब सोच कर वे मरीज कहाँ गए। लट्टू लाल जी, मैंने किया लट्टू लाल जी, अमा कहाँ हो, जिंदा हो कि मर गए, भगवान को प्यारे तो नहीं होगा। ये घर में घुस के अंदर मरीज के पलंग तक पहुंच गए। मरीज बिस्तर पर पड़ा पड़ा करार रहा था। अरे राम रे, अरे कौन आ गया। स्वभाव से बड़ा चिड़चिड़ा हो गया था। कौन है। अल जनाब मैं हूँ हुजूर मियाँ, आपका पड़ोसी, आपकी तबीयत देखने आया था।
अरे तुम हुजूर मियाँ हो या खजूर मियाँ हो, चले जाओ यहाँ से, मुझे किसी से नहीं मिलना, भाग जाओ।
तो बड़े मियाँ ने सुना, बैठ जाओ। फौरन बैठ गए।
शुक्रिया, सुना था आपकी तबीयत बहुत बिगड़ गई थी, अब क्या हाल है।
हाल, अरे बहुत बुरे हाल है, तबीयत बिगड़ती जा रही है, मर रहे हैं, ऐसा लगता है दो चार दिन में मर जाएंगे।
अम्मा ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, मैं तो जबरन घबरा लिया था, लेकिन खुदा जो भी करता है अच्छे के लिए करता है।
अबे मेरी तबीयत बहुत खराब है, मैं किसी भी दिन मर सकता हूँ।
हाँ हाँ मैं समझ गया, लेकिन अब खुदा ने चाहे तो ये नेक काम बहुत ही जल्दी होगा। मैं तो किस डॉक्टर को दिखाया है आपने, अम्मा किस डॉक्टर का इलाज चल रहा है।
यमराज का इलाज चल रहा है, यमराज का।
अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा डॉक्टर है, फीस जरूर ज्यादा है लेकिन इलाज कायदे का करता है। देखो साहब, डॉक्टर कोई भी हो, असली चीज है परहेज। आप खाने में क्या क्या ले रहे हैं।
आपका सर खा रहे हैं, कंकड़ पत्थर खा रहे हैं, कंकड़ पत्थर।
अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी चीज है, और वैसे भी ऐसी हालत में ये चीजें खाना चाहिए क्योंकि इनमें विटामिन और प्रोटीन वगैरह बहुत होते हैं। अब कुछ दिनों के लिए आपको हवा पानी बदलने कहीं बाहर जाना चाहिए। वैसे किस जगह जाना पसंद करेंगे आप।
हमें नरक में जाना पसंद करूंगे बुड्ढे, नरक में।
बहुत अच्छी जगह है, अल्लाह आपकी तमन्ना जल्दी से जल्दी पूरी करे।
कलयुग की आधुनिक मीराबाई अपने आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण स्नानागार में सिने तारिकाओं के साबुन लक्स सुप्रीम से गाना गाते हुए नहा रही थी।
मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई।
अचानक मीराबाई को लगा कि जैसे कोई आया है। आने वाले ने आवाज दी,
मीराबाई, मीराबाई, मीराबाई घर में है।
मीराबाई ने अपनी सुरीली आवाज में पूछा,
कौन है।
आने वाले ने जवाब दिया,
हम हैं सूरदास, सूरदास।
मीराबाई ने सूरदास को ड्राइंग रूम में बैठने के लिए कहा। फिर उन्होंने सोचा कि सूरदास ही तो हैं, बेचारे अंधे हैं, दिखाई तो इन्हें देता नहीं है। यह सोचकर वे बिना ड्रेसअप किए वैसे ही बाहर चली आईं।
कहो सूरदास, कैसे आना हुआ।
सूरदास ने अपनी आंखें मिचमिचाते हुए मिठाई का डब्बा मीराबाई की तरफ बढ़ाकर कहा,
लीजिए मीराबाई, मिठाई खाइए।
मीराबाई मिठाई खाते हुए बोली,
लेकिन सूरदास ये मिठाई किस लिए।
यह सुनकर सूरदास अपनी आंखें मिचमिचाते खिसियाते हुए शर्मा कर बोले,
मीराबाई ये मिठाई हम इसीलिए खिला रहे हैं क्योंकि कल हमारी आंखों का ऑपरेशन हुआ है, अब हम सब कुछ देख सकते हैं।
आज का जमाना क्रिकेट का जमाना है, जहां देखिए वहां क्रिकेट। क्रिकेट की इस हवा में एक साहब को क्रिकेट खेलने का जबरदस्त शौक चढ़ रहा है, जबकि उन्होंने कभी बाप जन्म में भी क्रिकेट नहीं खेली थी। अपने नौकर से बोले, अबे लच्छू अपन क्रिकेट खेलेंगे।
बाबूजी मैं तो आज तक क्रिकेट नहीं खेली, ये काम मेरे बस का नहीं है, आप सब काम कर दूंगा, मैं आपके कपड़े धो दूंगा, बर्तन मांगूंगा, लेकिन क्रिकेट खेलने को मत कहो।
लेकिन साहब कहाँ मानने वाले थे, उन पर तो क्रिकेट का भूत सवार था। एक तरफ तीन बांस गड़ा दिए, 50 पैसे वाली रबर की गेंद ले आए, कपड़े धोने वाली मोगरी को बैट बना लिया, फिर टॉस की जगह पत्थर पर थूक कर गीला सूखा कर लिया। नौकर टॉस जीत गया, लेकिन फिर भी मालिक ने पहली बैटिंग ले ली। बोले, देख अबे तू चपरासी है ना, और मैं मालिक हूँ, इसलिए पहली बैटिंग मैं करूंगा, तू गेंद ले और बॉलिंग कर।
जी बहुत अच्छा बाबूजी, मैं बॉलिंग कर रहा हूँ, आप खेलो बैटिंग करो।
खेल शुरू हो गया। नौकर ने गेंद फेंकी और साहब ने पहली गेंद पर इतनी जोर से शॉट मारा कि गेंद छत पर चली गई। नौकर गेंद लेने दौड़ा। जब नौकर बहुत देर बाद गेंद लेकर वापस आया तो साहब बोले,
कोवे लच्छू कहाँ मार गया था, तू हार जाएगा, इतनी देर में आया, अबे गधे मेरे 506 रन हो गए।
अरे बाबूजी क्या बताऊं, जब मैं छत पर गेंद लेने गया ना तो भाई जी ने मेरे को सब्जी लेने बाजार भेज दिया।
वो सब्जी बाजार लेने चले गए, वो रन बना रहे थे। जब केवल क्रिकेट की कमेंट्री सुनने वालों के ये हाल है तो जरा अंदाजा लगाइए क्रिकेट खेलने वालों के क्या हाल होंगे। दो क्रिकेट के खिलाड़ी जा रहे थे, सामने से आती हुई एक लड़की को देखकर कमेंट करने लगे,
बॉस गेंद अच्छी है यार।
अबे छोड़ यार, पुरानी गेंद है।
पुरानी गेंद तो क्या हुआ, अपन भी तो पुराने स्पिनर हैं।